नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश में 4000 से ज्यादा ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से हजारों लोगों को राहत दी गई। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण पर जोर दिया। महाअष्टमी पर्व आज प्रदेश के देवी मंदिरों में विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया जा रहा है और राज्य में अचानक मौसम बदलने से कई स्थानों पर तेज बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और अब तक 91,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। श्री शर्मा ने आज ब्यावर जिले के जैतारण में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री शर्मा ने कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत अब तक 4,121 ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित हुए हैं, जिनसे हजारों लोगों को राहत मिली है। उन्होंने जैतारण से 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जनता से किए गए सभी वादों को पूरी निष्ठा से पूरा करने का संकल्प लिया है।
आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट की नींव रखी है, जिससे आने वाले समय में राजस्थान में बिजली की किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए काम किया है। हमने राजस्थान की जनता से जो वायदा किया है, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि हम जनता के लिए, जनता के काम के लिए, जनता के उत्थान के लिए, गरीब के आंसू पोंछने के लिए और किसान को भरोसे के लिए कि हमारे किसान को पूरी तरह से मदद की जाएगी, हमारी सरकार लगातार काम करती है।
सेवा पखवाड़ा के तहत आज हनुमानगढ़ में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. रामप्रताप चौधरी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। सेवा पर्व श्रृंखला में आज हम आपको मोदी सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों के बारे में बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 11 सालों में स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में भारत ने तेजी से प्रगति की है। निपुण भारत मिशन, पीएम श्री योजना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और राष्ट्रीय ऋण रूपरेखा जैसी पहल शुरू की गई हैं। आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों में सुधार और विस्तार किया गया है। सरकार ने जुलाई 2020 में स्कूली शिक्षा और तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की। सरकार के प्रयासों से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 2014-15 में 51,000 से बढ़कर इस साल 70,000 से ज्यादा हो गई है। चिकित्सा शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है। 2014 से एम्स संस्थानों की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई है, जबकि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 2,000 से अधिक हो गई है, जिनमें लगभग 2,00,000 मेडिकल सीटें हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों को देश की आवश्यकताओं के अनुसार समाधान विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को एकजुटता की दिशा में एक साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में तीनों सेनाओं की संगोष्ठी में कहा कि जब तीनों सेवाएं एक स्वर, एक लय और एक ताल के साथ काम करेंगी, तभी देश हर मोर्चे पर किसी भी विरोधी का जवाब देने में सक्षम होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि तीनों सेनाओं के बेहतर तालमेल का सबसे ताजा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है।
यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है, जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में बस सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं।
उन्होंने कहा कि साइबर और सूचना युद्ध के मानकों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। इस संगोष्ठी में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी उपस्थित थे। यूनेस्को द्वारा बार्सिलोना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत की ओर से शिरकत की। उन्होंने कहा कि नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में हमें सांस्कृतिक विविधता को बचाना होगा और एआई को कलाकारों और समुदायों को सशक्त बनाने के औजार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। सम्मेलन के दौरान श्री शेखावत ने स्पेन के संस्कृति मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों ने 2024 से 2028 तक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। साथ ही वर्ष 2026 को भारत स्पेन संयुक्त सांस्कृतिक वर्ष घोषित किया गया। श्री शेखावत ने विश्वास जताया कि ये पहल दोनों देशों के सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने जापान, ऑस्ट्रेलिया, कांगो और सर्बिया के मंत्रियों के साथ भी सांस्कृतिक अधिकारों और सहयोग पर सार्थक चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जोधपुर के पालूखुर्द गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छोटे बच्चों से बातचीत की और उनकी गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र की कार्यकर्ताओं से बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, पोषण युक्त भोजन और उसकी गुणवत्ता की समीक्षा की। दिया कुमारी ने कहा कि सरकार बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आंगनबाड़ी केंद्रों को और अधिक सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को केंद्रों की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। नवरात्र के आठवें दिन आज महाअष्टमी पर देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश भर के देवी मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रसिद्ध शक्तिपीठों और मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना और यज्ञ कुंडों में आहुतियों का दौर जारी रहा। डूंगरपुर के आशापुरा और बिजवा माता शक्तिपीठ, बाड़मेर के वीरातारा स्थित वाकल माता सहित कई स्थानों पर दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पाली मुख्यालय स्थित करणी माता मंदिर में भक्तों द्वारा कन्याओं को भोजन करवाया गया। करौली जिले के कैला देवी मेले में चल रहे शारदीय नवरात्र मेले में दुर्गाष्टमी के मौके पर आज राजस्थान के अलावा कई अन्य राज्यों के हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किये।
दुर्गाष्टमी के मौके पर आज उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं और चारों ओर लांगुरिया गीतों की धूम से मंदिर परिसर भक्ति में बना रहा। दोपहर बाद अचानक हुई तेज बारिश और ठंडी हवाओं के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। बारिश के दौरान भी भक्तों ने माता के दर्शन जारी रखे और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर आए महिला और पुरुष श्रद्धालु भक्ति रस में झूमते नजर आए। जिला प्रशासन मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा और व्यवस्थित दर्शन के लिए व्यापक इंतजाम किए। पुलिस और सुरक्षा कर्मी प्रमुख मार्गों और भीड़ वाले क्षेत्रों में तैनात रहे। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
प्रदेश में कल से समाज कल्याण सप्ताह शुरू हो रहा है। इस सप्ताह का उद्देश्य कमजोर वर्गों और अन्य वर्गों के कल्याण तथा अधिकारों के प्रति जन चेतना लाना है। कल पहले दिन वृद्ध जन दिवस मनाया जाएगा। जयपुर में जिला प्रशासन की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को सहायता उपकरण वितरित किए जाएंगे। सक्षम जयपुर अभियान के तहत जामडोली स्थित सामाजिक न्याय संकुल में शिविर लगेगा। इसमें राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र समेत अन्य उपकरण दिए जाएंगे। वहीं सवाई माधोपुर में भी वृद्धजनों के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे, जिनमें पेंशन स्वीकृति, सम्मान, चिकित्सा जांच और वृद्धाश्रम में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना शामिल है। प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्यों में नया पर्यटन सत्र कल से फिर शुरू हो रहा है। पाली जिले के जवाई बांध वन्य जीव अभ्यारण्य में कल से जीप सफारी और पर्यटकों की आवाजाही फिर शुरू हो रही है। वन विभाग और पर्यटन व्यवसायियों की ओर से इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। इसी तरह सवाई माधोपुर के विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में नए पर्यटन सत्र के लिए देशी विदेशी पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। मॉनसून के बाद जंगल का मनोरम दृश्य देखने और टाइगर सफारी का रोमांच महसूस करने के लिए पर्यटकों में खासा उत्साह है।
होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे नए कलेवर और साज सज्जा के साथ पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हैं। रणथंभौर रोड 3 माह बाद फिर से पर्यटकों की रौनक से गुलजार हो उठा है। बाघों के दीदार के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। 2 अक्टूबर से सभी 10 जोन खुलने तथा अवकाश के चलते पर्यटकों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। वन विभाग की ओर से एक पारी में 146 वाहनों के जरिए करीब 1500 पर्यटकों को भ्रमण की अनुमति होगी। 3 माह बाद बाघों के दीदार को लेकर सैलानियों और पर्यटन व्यवसायियों में खासा देखा जा रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं से लोग प्रेरणा ले रहे हैं। अजमेर में फिल्म देखने के बाद एक दर्शक ने अपने विचार कुछ इस तरह प्रकट किए।
जो हमने नरेंद्र मोदी जी का बचपन नहीं देखा था, आज इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमें जानकारी मिली और बहुत अच्छा लगा डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद। और मैं चाहूंगा कि किसी ने नहीं देखा जरूर देखे। हमारे युग पुरुष जो कि आज देश को कहां से कहां लेके गए हैं, और मैं तो यही कहूंगा हमारा देश एक दिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नंबर 1 होगा।
बालोतरा जिले में आज एक बड़े सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 25 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना बाड़मेर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बांगुड़ी के पास एक कार और बस की टक्कर से हुई। टक्कर के बाद बस पलट गई। इस हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं बस में सवार 25 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 10 गंभीर घायलों को इलाज के लिए जोधपुर भेजा गया है। और अब मौसम। प्रदेश में अचानक मौसम बदलने से कई स्थानों पर तेज बारिश हुई है। इस बारिश से लंबे समय से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जयपुर में मूसलाधार बारिश हुई जिससे कई जगह पानी भर गया। सिरोही, धौलपुर, श्रीगंगानगर और करौली में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। धौलपुर में सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार आज शेखावाटी क्षेत्र सहित जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की प्रबल संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि शेखावाटी क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश में 4000 से ज्यादा ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से हजारों लोगों को राहत दी गई। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण पर जोर दिया। महाअष्टमी पर्व पर आज प्रदेश के देवी मंदिरों में विभिन्न आयोजन और राज्य में अचानक मौसम बदलने से कई स्थानों पर तेज बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।